3 मई दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फतल। सीरिया में अलेप्पो में लड़ाई जारी, लेकिन शांति स्थापना के प्रयास भी हो रहे। उत्तराखंड के राजनीतिक संकट में एक बार फिर आरोपों प्रत्यारोपों का दौर। देखेंगे भूभाग के आदान प्रदान के बाद बांग्लादेश से भारत आने वाले लोग क्यों नहीं हैं खुश।
921 में 3 आदमी मारा गया, इसी बीच में सर्दी से 2 आदमी मर गया, एक अपना बीमारी से मर गया, और 12 आदमी भाग गए अपने, मतलब बांग्लादेश में वो लोग चले गए।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। रूस ने उम्मीद जताई है कि सीरिया के सबसे बड़े शहर अलेप्पो में चंद घंटों के भीतर लड़ाई बंद होने की घोषणा हो सकती है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के साथ मॉस्को में बातचीत के बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति बशर अल असद और सीरियाई विपक्ष को 5 साल से चल रहे गृह युद्ध को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा। संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टेफान दे मिस्तुरा अलेप्पो में भारी गोलीबारी के बीच मॉस्को पहुंचे हैं ताकि सीरिया में अस्थायी युद्ध विराम पर अमल कराया जा सके। भारत सरकार ने एक अमरीकी आयोग की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसके मुताबिक भारत में पिछले साल यानी 2015 में असहिष्णुता बढ़ी है और धार्मिक आज़ादी के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में भी इजाफा हुआ है। साथ ही रिपोर्ट में भारतीय पुलिस की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए गए हैं। लेकिन सरकार ने कहा है कि अमरीकी आयोग को भारत, उसके संविधान और यहाँ के समाज के बारे में सही जानकारी नहीं है। अफगानिस्तान का एक 5 वर्षीय बच्चा मुर्तजा अपने परिवार के साथ पाकिस्तान पहुंच गया है। मुर्तजा अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के नाम वाली प्लास्टिक बैग से बनी एक जर्सी पहनकर इंटरनेट पर छा गया था। इसके बाद उसे खुद मेसी की तरफ से उनकी दस्तखत वाली असली जर्सी मिली थी। क्वेटा में बीबीसी से बात करते हुए मुर्तजा अहमदी के पिता आरिफ अहमदी ने बताया कि उन्हें धमकियां मिल रही थीं।
अफगानिस्तान वाला पेज मसला ना बहुत बिस्यार रसाना हो ज्यादा में आमद।
कुछ दिन पहले मुझे एक स्थानीय गैंगस्टर का फोन आया। उसने सोचा कि चूंकि मेरे बेटे को मेसी से टी शर्ट मिली है तो उसके साथ कुछ पैसा भी मिला होगा, इसलिए वो अपना हिस्सा मांग रहा था। मुर्तजा के लिए वहाँ हालात बहुत खतरनाक हो चले थे, इसलिए हम वहाँ से पाकिस्तान चले आए। ये थे मुर्तजा के पिता आरिफ अहमदी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सिंगापुर और बांग्लादेश ने संदिग्ध इस्लामी कट्टरपंथी लोगों को गिरफ्तार किया है। सिंगापुर का कहना है कि उसने 8 लोगों को हिरासत में लिया है जो बांग्लादेश की सरकार को हटाने की योजना बना रहे थे और इस्लामिक स्टेट गुट के साथ मिलकर एक कट्टरपंथी सरकार बांग्लादेश में कायम करना चाहते थे। इसके बाद सिंगापुर की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर बांग्लादेश पुलिस ने भी उसी गुट के ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्हें हाल ही में सिंगापुर से प्रत्यर्पित किया गया था। श्रीलंका की संसद में आज हाथापाई के बाद सत्ता पक्ष के एक सांसद को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में उस वक्त हिंसा भड़क उठी जब सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की सैन्य सुरक्षा हटाने को सही ठहराया। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने कहा कि अन्य विशिष्ट लोगों की तरह पूर्व राष्ट्रपति को पुलिस सुरक्षा दी जा रही है। और उत्तरी इराक में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने एक अमरीकी सैनिक की गोली मारकर हत्या कर दी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। शुरुआत करते हैं सीरिया से। सीरिया के अलेप्पो में सरकारी सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इस बीच सीरिया में शांति स्थापना के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफान डे मिस्तुरा ने अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात की है। बातचीत के बाद रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति असद की सरकार और सीरियाई विपक्ष को मिलकर 5 साल से जारी गृह युद्ध को खत्म करने की दिशा में काम करना होगा। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ अमरेश द्विवेदी।
सीरिया के उत्तरी शहर अलेप्पो में जारी भीषण लड़ाई में बीते 10 दिन में 250 से ज्यादा लोगों की जान गई है और तमाम लोग जख्मी हुए हैं। बीते फरवरी महीने में सीरिया में आंशिक युद्ध विराम का एक समझौता हुआ था जो अलेप्पो की हिंसा को देखते हुए लगातार खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। उसी समझौते को बचाने के लिए सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफान दी मिस्तूरा ने मॉस्को में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की है और सभी पक्षों से शांति प्रक्रिया में सहयोग देने की अपील की है।
मैंने रूस, अमेरिका और सीरिया को सहयोग दे रहे अंतर्राष्ट्रीय समूह से अपील की है और अब दोबारा कर रहा हूं कि 27 फरवरी को हमने आंशिक युद्ध विराम के रूप में जो कामयाबी हासिल की थी उसे और कारगर बनाने की जरूरत है।
संयुक्त राष्ट्रदूत मिस्तूरा से मुलाकात के बाद रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने भी कहा कि फरवरी के युद्ध विराम को अलेप्पो तक बढ़ाया जा सकता है और इसके उपाय ढूंढने के लिए रूस और अमेरिका आपस में बात भी कर रहे हैं।
अमेरिका और हमारा साझा मकसद आंशिक युद्ध विराम को विस्तार देने और इसे स्थायी बनाने का है। अब हम रूसी और अमरीकी सेना के साथ समझौते की कगार पर हैं ताकि युद्ध विराम को अलेप्पो में भी लागू किया जा सके और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे।
सीरिया में पिछले 5 साल से गृह युद्ध जारी है जिसमें राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना और उनके विरोधी गुट लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह करने वाली इस लड़ाई में राष्ट्रपति असद को रूस का समर्थन हासिल है जबकि अमेरिका सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सीरिया में शांति स्थापना के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्रदूत मिस्तूरा ने एक दिन पहले जिनेवा में अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से भी मुलाकात की थी। इस वार्ता में जॉन कैरी ने भी अलेप्पो में जारी लड़ाई को लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि इससे शांति स्थापना के लिए किए जा रहे प्रयासों को खतरा पैदा हो गया है।
यू कैन नॉट हैव लेजिटिमेट पॉलिटिकल टॉक्स अबाउट पीस व्हेन द पार्टीज एट द टेबल।
आप तब तक शांति स्थापना को लेकर राजनीतिक वार्ता नहीं कर सकते जब तक वार्ता में शामिल सभी पक्ष समझौते और मानवीय सहायता को लेकर प्रतिबद्ध ना हो। एक पक्ष अगर लगातार समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा हो तो फिर उद्देश्य हासिल नहीं किए जा सकते।
अमेरिका का आरोप है कि अलेप्पो में राष्ट्रपति असद के सैनिकों को रूस रोक नहीं पा रहा और आम लोग हमलों के शिकार हो रहे हैं, जबकि रूस का कहना है कि हवाई हमलों में केवल अल नुसरा फ्रंट से जुड़े चरमपंथियों को निशाना बनाया जा रहा है। उधर रेडक्रॉस ने चेतावनी दी है कि अलेप्पो लगातार मानवीय त्रासदी की ओर बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।
सीरिया में लड़ाई के बीच शांति प्रयास भी जारी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
रुख करते हैं भारत का। उत्तराखंड में जारी राजनीतिक संकट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए राहत के संकेत मिलते दिख रहे हैं। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि केंद्र को उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट पर विचार करना चाहिए। कोर्ट की राय थी कि ये शक्ति परीक्षण अदालत की देखरेख में कराया जा सकता है। इस समय उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू है। केंद्र सरकार कल यानी बुधवार को कोर्ट के सामने इस मशवरे पर अपना जवाब देगी। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप और तीखे होते जा रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि उत्तराखंड के मामले पर केंद्र सरकार और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य की जनता के बीच कांग्रेस के शासन और उसके मुखिया हरीश रावत की पोल खुल गई है। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड के जंगलों की आग अभी थमी भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के एक मशवरे से यहाँ के राजनीतिक गलियारे एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि उत्तराखंड के मामले पर वो विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बारे में विचार करे। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्यों नहीं रामेश्वर फैसले की रोशनी में उत्तराखंड में भी बहुमत परीक्षण का मौका मिलना चाहिए। इसे कोर्ट की निगरानी में करवाया जा सकता है। अदालत की पीठ ने कहा कि अगर हम राष्ट्रपति शासन को सही भी ठहराते हैं तो फ्लोर टेस्ट तो होगा ही। उधर सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया। इधर देहरादून में बीजेपी गलियारों में बेचैनी बढ़ने लगी। इसी बीच बीजेपी विधायक को खरीदने की कोशिश का नया आरोप सामने आ गया। सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को।
मेरी समझ में नहीं आता, बोरे लेके घूम रहे, घूम अपना रहे, हमारे विधायकों पर भी इन्होंने हाथ मारा है दो तीनों पर, मुझे तो आज पता लगा है। मुझे आज एक विधायक ने बताया कि मेरे पास फोन आया था और कह रहे थे ये है करके।
अजय भट्ट नाम बताने से कतराते रहे लेकिन वो विधायक ही सामने आ गए जिन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही थी। ये है बीजेपी विधायक मालचंद।
उन्होंने मुझसे भी संपर्क किया लेकिन मैं भाजपा का आदमी और भाजपा के आचार विचार से जन्मा हूँ, 20 साल भाजपा में हो गए तो हम जैसे लोगों पे तो दूर तक उनकी हिम्मत नहीं होती कि बात करें। उन्होंने प्रयास किया
देखिए वो लालच के लिए तो वो कहो कि वो तो इतने लड़ाए थे कि कुछ भी कहने को मजबूर है।
उधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे आरोप लगाना उसका शगल बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक तरह से बीजेपी की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि दम हो तो उसके नेता गंगा की कसम खाकर कह दें कि वे कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे थे।
तो ये मुझे कोई नेता जो है अपनी माँ के साथ हर की पैड़ी पर जाए और गंगा के बीच में खड़ा होकर के जल लेकर के हाथ में कहे कि मैं माँ की कसम खा के कह रहा हूँ कि हमारे नेता जो है कांग्रेसी विधायकों से संपर्क नहीं कर रहे।
उधर बागी खेमा भी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को लेकर कुछ असहज तो नजर आ ही रहा है। बागी खेमे के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय भोगड़ा का कहना है कि जल्द चुनाव ही इस राज्य के लिए उपयोगी होंगे।
राष्ट्रपति शासन जल्दी हटेगा क्योंकि उसकी अवधि होती है। मैं चाहता हूँ ये जल्दी चुनाव हो और जनता भी अपना देखे कि किस तरफ उनको किस तरह की सरकार चाहिए।
लेकिन ये चुनाव होंगे या हरीश रावत की सरकार बहाल कर दी जाएगी, ये सब निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाइयों पर, जो अभी कम से कम 10 रोज तो चलती ही रहेंगी। फिलहाल तो केंद्र को कल कोर्ट के शक्ति परीक्षण के सुझाव का कोई ठोस जवाब देना है। राजनीतिक संकट के बीच उत्तराखंड इन दिनों पर्यावरण की एक बड़ी विपदा से भी जूझ रहा है। जंगलों की आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। करीब 1600 घटनाओं में 3400 हेक्टेयर से ज्यादा का जंगल बर्बाद हो चुका है। आम जनजीवन और वन्य जीवों पर इस आग ने कहर ढा दिया था। अब जो कुछ उम्मीद है वो आने वाले दिनों के बारिश से ही है। शिव जोशी, BBC देहरादून।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जारी छात्रों की भूख हड़ताल के छठे दिन आज शिक्षकों ने भी छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल की। छात्र संघ के अलावा ABVP से जुड़े छात्र 9 फरवरी को विवादास्पद नारों के मामले में प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन कैंपस में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता है। विनीत खरे की रिपोर्ट।
मैं इस वक्त हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो एडमिन ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, वहां पर जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलावा जो वामपंथी दलों से जुड़े छात्र संगठन हैं, उनके छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। और अभी जो दोनों तरफ के जो छात्र हैं उनके बीच में काफी बहस हो रही थी कि जिस कारण हड़ताल पर बैठे हैं, बाहर से लोग आए हैं यहाँ पर, इसको लेकर भी काफी बहस हुई है दोनों पक्षों के बीच। जो विश्वविद्यालय के जो अध्यापक हैं वो भी इन इस अनशन के समर्थन में आज एक दिन के अनशन पर बैठे हैं। हमारे साथ हैं विक्रमादित्य चौधरी, जवाहरलाल नेहरू टीचर्स एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी हैं। इसका कोई सोल्यूशन दिखता होता दिख रहा है आपको?
जो हम कहते हैं असहिष्णु प्रशासन से छात्र जूझ रहे हैं, कम से कम उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर कूलर, दैट एडमिनिस्ट्रेशन, एनी एडमिनिस्ट्रेशन कैन डू, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट दैट यू नीड, बट इज अ जेस्चर दैट यू से दैट वी आर कंसर्न, हाँ, कि हम आपके स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार हैं। आज 26 तारीख से बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी गॉन टू हॉस्पिटल।
सौरभ शर्मा,
सौरभ इज हॉस्पिटलाइज्ड। एक जांच समिति जिसके आधार पे आपने ये दंड निर्धारित किए हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी प्रश्न चिन्ह लगी हुई है, क्योंकि जस्टिस शाह कमेटी जो यहाँ आए थे उन्होंने भी कहा कि उन्होंने जो प्रोसीजरल लैप्सेस, कि उन्होंने उन चीज़ों को नहीं के तरह जो क्योंकि जो व्यवस्थागत तरीके से जाँच नहीं हुई, तो आप उनको विड्रॉ करिए, देन आप जो आपके सामान्य तरीके हैं प्रशासन के उसके तहत आप काम करें। प्रशासन को तुरंत छात्रों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनको वो हर संभव कोशिश करनी चाहिए जिससे कि भूख हड़ताल समाप्त हो।
हम इस वक्त हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कैंपस में और हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पर। जो लोग इस एजुटेशन से नहीं जुड़े हैं, क्या उनकी ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ रहा है, उनकी पढ़ाई पर किसी तरह फ़र्क पड़ रहा है?
सारे लगभग सारे कोर्सेज एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, क्लासेस और हो चुकी हैं, इसके बाद जो स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हैं, इससे JNU में जो आम छात्र हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो पा रही है।
जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने, और मैं यहाँ पर आपका नाम नहीं ले रहा हूँ जैसा कि आप चाह रहे हैं, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे इशू को हैंडल किया है, 6 या 7 दिन हो गए हैं,
प्रशासन ने किस तरह से हैंडल किया है?
आई थिंक प्रॉब्लम ये आई है कि वो इंक्वायरी की जो प्रोसीडिंग्स है वो कितनी ट्रांसपेरेंट है कि नहीं।
और जो जब से विवाद हुआ है तब से आपकी ज़िंदगी पर किस तरह से असर पड़ा है? आप बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि आने जाने में समस्या होती है, लोग सिक्योरिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए।
देखिए, सिक्योरिटी को लेकर मेरा कहना ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट पहली बात अगर घर जाता है तो सबसे पहले जो उसके आस पड़ोस के लोग हैं वो उसे पहली तरह लेबल कर देते हैं कि एंटी नेशनल है, उन्हें पता है कि बंदा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वहाँ पर उसकी एक ऐसी इमेज बना देते हैं कि ये तो नक्सली है। मुझसे भी नक्सली कहा गया मेरे घर पे जाके, ऑल्दो कि मेरे फैमिली पूरी बीजेपी अलाइड है, पर जब मुझसे यहाँ कहा गया तो मतलब मैं लेफ्ट को भी सिंपथाइज नहीं करता पूरी तरह से, मैं लेफ्ट को क्रिटिसाइज करता हूँ, रवि को भी क्रिटिसाइज करता हूँ। कुछ बदतमीजियाँ हुई हैं, जेएनयू की जो स्वेटशर्ट पहने हुए बच्चियाँ थीं, लड़के थे, लड़कियाँ थीं।
कन्हैया कुमार को लेकर क्या सोच है?
देखिए, कन्हैया कैंपस पॉलिटिक्स से बाहर निकलना चाहते हैं और बाहर निकल के आप प्रिंसिपल पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं।
मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि मीडिया पे न्यूज़ की कमी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि हर बात पे कि कन्हैया इस पर क्या सोचता है, कन्हैया इस पर क्या कर रहा है, आई थिंक दैट इज़ गिविंग हिम टू मच ऑफ मीडिया स्पेस।
देखिए, बहुत सारे छात्र हैं जो पाँव छूने से डिसोशिएट करते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के आप पैर छूएं, बट प्रॉब्लम ये है कि कन्हैया इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल जेएनयू।
ये थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से विनीत खरे। प्रशासन इस स्थिति को सुलझाने के क्या प्रयास कर रहा है, हमने ये जानने के लिए जेएनयू वाइस चांसलर प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के दफ्तर से संपर्क किया, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिल पाया।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। थोड़ी देर पहले आपने उत्तराखंड के जंगलों में आग का जिक्र सुना। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में लगी आग को आज राज्य में हुई बारिश से रोकने में बहुत मदद मिली है। इससे पहले आग ने राज्य में गंभीर रूप अख्तियार कर लिया था और कसौली के कुछ बोर्डिंग स्कूलों के निकट पहुंचने की खबरें थीं। मैंने शिमला फोन कर अश्विनी शर्मा से संपर्क किया और पूछा कि इस बार हिमाचल के जंगलों में लगी आग कितनी गंभीर थी।
देखिए, हिमाचल में पिछले लगभग 15 और 20 दिनों के अंदर अभी तक 572 से ज्यादा आग के रिपोर्ट्स आई हैं और ये हिमाचल के 6 जिलों में आग लगी हुई थी जंगलों में, जिसके कारण लगभग 3500 हेक्टेयर भूमि, जो फॉरेस्ट भूमि थी, उसको नुकसान हुआ है। जो इन्होंने अनुमान नुकसान का लगाया है, लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। इसमें जो नेचुरल एक अपने आप जंगल पैदा हुए हैं वो भी हैं और जो इन्होंने नए जंगल उगाए थे उसमें भी नुकसान हुआ है, ये अभी तक का अनुमान है।
इस तरह की खबरें थीं कि कसौली के किसी बोर्डिंग स्कूल के भी बहुत नजदीक तक ये आग पहुंच चुकी थी।
काफी 2-3 दिनों से कसौली के जो निचले पहाड़ हैं उनमें आग लगी हुई थी, स्कूल है उसके नजदीक थी, लेकिन वहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ। जिला अधिकारी वहां पहुंच गए थे और वन विभाग के लोग भी पहुंच गए थे और फायर कंट्रोल वाले, उन्होंने मशीनरी वहां पे लगा दी थी और स्कूल को कोई नुकसान हुआ, कोई इवैक्यूएशन नहीं हुई वहां।
ये बताएं, ये इस तरह की आग ये वन ऑफ थिंग है या ये अक्सर होती रहती है हिमाचल प्रदेश में?
देखिए, गर्मियों में हर साल आग लगती है जंगलों में और हमारे पास अभी तक का जो डाटा है पिछले कुछ सालों का, इस बार 3 सालों के एक साइकिल के बाद ये आग लगना शुरू हुई है। पिछले 2 या 3 सालों में कम आग की घटनाएं हमारे सामने आई हैं। 2012 और 13 में लगभग 1790 के करीब आग के सूचनाएं मिली थी, आग लगी थी और उसमें भारी नुकसान भी हुआ था। उसके 3 साल पहले भी ऐसी ही 2009-2010 की हमारे पास सूचना है, उस साल भी बहुत सारी लगभग 2000 के करीब आग की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हुई थी। और वन विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि एक साइकिल होता है और इस बार गर्मी कुछ जल्दी हो गई है और दिसंबर और नवंबर के महीनों में जो बारिश होती थी बारिश नहीं हुई है, उस वजह से ये आग की घटनाएं ज्यादा हुई हैं हिमाचल में।
ये बताएं, इस समय वर्तमान स्थिति क्या है, नियंत्रण पाया जा चुका है आग पर, क्या है स्थिति?
कि आज की जो सूचनाएं हैं उसके मुताबिक शिमला जो है, शिमला में आज बारिश हुई है और मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 2-3 दिनों में बारिश और ओले पड़ने की संभावनाएं हैं, जिस वजह से जंगलों में जो आग लगी हुई है वो शांत हो जाएगी। सोलन एक जिला था जिसमें जो आपने जिक्र किया था स्कूल का, उसमें भी आज कोई नई घटना सामने नहीं आई है। दो जिले और बिलासपुर ऊना उसमें से भी कोई नई घटना आज सामने नहीं आई है। और वन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी है अपने जो जिले हैं वहां वहां जो वन विभाग के अधिकारी थे उनसे रिपोर्ट मंगवाई है और आज कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि स्थिति संतोषजनक है।
ये थे शिमला से अश्विनी शर्मा। पिछले साल बांग्लादेश और भारत के बीच हुई संधि के बाद दोनों देशों के कई भूभागों का आदान प्रदान हुआ था जिसके तहत बांग्लादेश में रहने वाले 961 लोग भारत आ गए। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में इनके लिए 3 कैंप्स बनाए गए हैं। सवाल उठता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये मत अपने डालेंगे या नहीं, मगर कई ऐसे बांग्लादेश से आने वाले लोग हैं जो खुश नहीं हैं। क्यों, बता रहे हैं कूचबिहार से भेजी अपनी रिपोर्ट में बीबीसी संवाददाता सलमान रवि।
ये हैं 105 साल के असगर अली जो अपनी जिंदगी में पहली बार वोट डालेंगे। ये उनका सपना भी था जो अब सच होने जा रहा है, मगर लंबी बीमारी से जूझ रहे असगर अली को 5 मई का इंतजार है। इसी दिन उन्हें भारत का नागरिक होने का एहसास पहली बार होगा।
क्या बोल रहे हैं ये?
उन्होंने बोल रहा है क्योंकि इतने साल हुआ है, उन्होंने उनका 100 साल पूरा हो चुका है, अभी वोट देंगे पहली बार। पहली बार वोट देने से पहले जब ऊपर चला जाए तो गया, और वोट देंगे तो बहुत ही अच्छा, ऐसे बोल रहा है।
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के छीट महल के लोगों में खुशी की लहर है। रह तो ये रहे हैं कई सालों से, मगर इनकी जमीन का हिस्सा बांग्लादेश के अधीन था। पिछले साल भारत और बांग्लादेश में इस तरह की जमीन का आदान प्रदान हो गया और लोगों की मुश्किलें आसान हो गईं। कूच बिहार के दीनाहाटा के रहने वाले आलमगीर भी काफी उत्साहित हैं।
पहली बार वोट डालेंगे?
हाँ, बड़ी बात, पहली बार वोट डालेंगे।
उसका कोई जश्न होगा क्या? पार्टी भी होगी गांव में, आप लोग मनाएंगे?
वो तो बाद में देखा जाएगा।
अभी वोट के डालने के टाइम में कोई पार्टी भी मनाएंगे?
वो तो होगा,
वो तो जरूर होगा, लेकिन
तो सबके लिए खुशी की बात है।
खुशी की बात है।
आप लोग को पूछा कि बांग्लादेश जाना है या यहाँ रहना है?
हाँ, हमको पूछा, सर्वे का जो दूदस में मिलकर था तो पूछा था तुम बांग्लादेश जाओगी? नहीं नहीं जाओगे, हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे।
क्यों?
बांग्लादेश तो गरीब आदमी है, तो काम करने का जगह कहाँ मिलेगा? हमारा जो यहाँ खेती नहीं है तो घर का जो ठिकाना है 2-1 कटा है, उसमें तो घर बनाया है। और अभी इंडिया में जाएंगे, दिल्ली राजस्थान में मजदूर करेंगे तो 200-250 रुपये मिल जाएगा, तो हमारा फैमिली चल जाएगा। और बांग्लादेश जाके हम क्या करेंगे? वहाँ तो थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का से थोड़ा सा बड़ा है, वहाँ क्या काम है? काम तो नहीं है, फिर भूखे भूखे मर जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ रहेंगे।
आदान प्रदान की इस संधि के बाद 961 बांग्लादेशी हैं जो अब भारत आ गए हैं। दीनाहाटा शहर से कुछ ही दूर पर सरकार ने बांग्लादेश से भारत आने वालों के लिए कैंप बनाए हैं। मगर बांग्लादेश से यहाँ आए लोग उतने खुश नहीं नजर आ रहे हैं जितना कि असगर अली और आलमगीर। ये हैं बांग्लादेश से आई पारुल, जो कह रही थी कि वो काफी तनाव में हैं क्योंकि अभी तक भारत आए इन लोगों को नागरिकता नहीं मिल पाई है। अलबत्ता इन लोगों के नाम मतदाता सूची में जरूर शामिल कर दिए गए हैं। पारुल के साथ ही कैंप में रहने वाले कृष्णा अधिकारी भी व्यवस्था से खुश नहीं हैं।
আমার পরিবারে সদস্য 9 জন ফ্যামিলি হয়েছে একটা। যারা এখানে অপশন দিতে মানে এখান থেকে ভারত থেকে যারা বাংলাদেশে অপশন কারি গিয়েছিল।
कृष्णा अधिकारी कह रहे थे कि उनका परिवार काफी बड़ा है। वो कह रहे थे कि जो अनाज उन्हें मिलता है उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी कैंप में भारतीय बर्मन भी रहती हैं जो अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं।
পুনর্বাসন দেওয়া কথা, পুনর্বাসনের কিছুই নেই, এখানে আসিয়ে দেখি এখানে কিছুই নেই, এলাও কিছু পাই নেই, এমনি খালি ভোট নিয়ে ব্যস্ত।
भारती बर्मन का कहना था कि सारा सरकारी महकमा चुनाव को लेकर भिड़ा हुआ है, जबकि उनकी नागरिकता का अभी तक उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला है। भारती बर्मन का ये भी आरोप है कि जो पुनर्वास का वादा उनसे किया गया था वो भी पूरा नहीं किया गया है। वो ये भी कह रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो दोबारा बांग्लादेश चली जाएंगी। वहीं भारत और बांग्लादेश के इन लोगों के लिए संघर्ष करने वाले दीप्तिमान सेनगुप्ता कहते हैं कि अब तक इन 3 कैंपों में से 12 लोग चोरी छुपे वापस बांग्लादेश भाग भी गए हैं।
ये 921 में 3 आदमी मारा गया इसी बीच में, ये 8 महीना कंप्लीट हुआ है, 3 आदमी मर गया सर्दी से, 2 आदमी मर गया एक अपना बीमारी से मर गया, और 12 आदमी भाग गए अपने मतलब बांग्लादेश में, वो लोग चले गए और वो भी ब्लैक से चले गए हल्दीबारी कैंप से, और इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात और कुछ नहीं है कम से कम मेरे देश के।
दीप्तिमान का ये भी कहना था कि जो भूभाग बांग्लादेश को मिला है वहाँ की सरकार ने सारी बुनियादी सुविधाओं का इंतज़ाम कर दिया है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल यहाँ के कैंपों में रहने वालों को सिर्फ अपना वोट डालकर ही दिल को दिलासा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनकी नागरिकता के प्रमाण पत्र की प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। यहाँ रहने वालों के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है इंतजार, और सिर्फ इंतजार। सलमान रावी, BBC, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल।
बारह साल पहले चेल्सी फुटबॉल क्लब ने अपने मैनेजर क्लाडियो रोनियरी को बर्खास्त किया था। अब उन्हीं रोनियरी ने लीस्टर सिटी को चैंपियन बनवाया है, वो भी इंग्लिश प्रीमियर लीग में। कैसे हुआ ये कारनामा, बता रहे हैं आदेश कुमार गुप्त एक रिपोर्ट में।
इंग्लिश प्रीमियर लीग को दुनिया की बेहतरीन फुटबॉल लीग में से एक माना जाता है, और इस बार इसकी चैंपियन बनी एक नई टीम लीस्टर सिटी। दरअसल कल चेल्सी और टॉटनहम हॉटस्पर के बीच मुकाबला 2-2 से बराबरी पर छूटा, और इसी के साथ लीस्टर सिटी को पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का चैंपियन बनने का अवसर मिल गया। कल लीस्टर सिटी के खिलाड़ी अपनी टीम के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले जेमी वार्डी के घर पर मौजूद थे, और जब टीम चैंपियन बन गई तो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हैरानी की बात है कि एक साल पहले यही लीस्टर सिटी इंग्लिश प्रीमियर लीग से रेलिगेट होकर सेकेंड डिवीजन में खिसक गई थी, लेकिन इसने शानदार वापसी की। लीस्टर की इस कामयाबी पर उसके पूर्व कप्तान स्टीव वॉल्श ने कहा,
Mind blowing, just unbelievable, really is. Been at Leicester for 14 years, so I've become a massive
अद्भुत,
fan.
अविश्वसनीय। मैं लीस्टर में रह रहा हूँ, इसलिए मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ। क्लब को इतिहास बनाते देखने का एहसास मैं समझ सकता हूँ। वाकई ये खेलों में अभी तक का सबसे बड़ा उलटफेर है।
स्टीव वॉल्श के शब्द। वहीं लीस्टर के मेयर सर पीटर सोल्सबे की खुशी भी ऐसे ही व्यक्त हुई।
ये वाकई आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि अब तक सारी दुनिया की मीडिया में इसकी चर्चा हो रही होगी। हम चैंपियन हैं, लेकिन मैं इससे अधिक चाहता हूँ। अब अगले सप्ताह तक हमारे नगर में कैमरा टीम रहेंगी, लेकिन आज का दिन सचमुच अविश्वसनीय है।
सर पीटर सोल्सबे के शब्द। चैंपियन बनने के सफर में लीस्टर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी और दूसरी बड़ी टीमों को मात दी। लीस्टर सिटी के चैंपियन बनने की गाथा भी किंवदंतियों जैसी है। कमाल की बात है कि जिन क्लाडियो रोनियरी को 12 साल पहले चेल्सी ने बर्खास्त किया था, उन्हीं रोनियरी ने मैनेजर के रूप में लीस्टर सिटी को चैंपियन बनाया। लीस्टर की इस कामयाबी की वजह बताते हैं जाने माने फुटबॉल समीक्षक नोवी कपाड़िया।
लिवरपूल से 2-0 जीते, मैनचेस्टर सिटी से जीते, तो सब जो उनके खास प्रतिद्वंदी थे सबसे वो जीतते हुए आज चैंपियन बने, तो उन्होंने ये दिखा दिया कि सिर्फ पैसा से सफलता नहीं मिलती है। पूरे सीजन में 26 से 27 प्लेयर ही खेले, कई प्लेयर जैसे जेमी वार्डी टॉप स्कोर 22 गोल से, 15 गोल रियाद महराज ने किए, तो वो जो खास प्लेयर है वो ही खेलते रहे। जब ये सस्पेंडेड थे जेमी वार्डी, तो उलोवा आए अर्जेंटीना के स्ट्राइकर, उन्होंने भी अंतिम मैचों में बहुत अच्छे 3 गोल किए, तो वार्डी का ना होने से भी कोई अंतर नहीं पड़ा।
लीस्टर सिटी ने 22 जीत 11 ड्रॉ और 3 हार के साथ 77 अंक जुटाते हुए पहला स्थान हासिल किया।
और अब सभा की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार रूस ने उम्मीद जताई है कि सीरिया के सबसे बड़े शहर अलेप्पो में चंद घंटों के भीतर लड़ाई बंद होने की घोषणा हो सकती है। भारत सरकार ने एक अमरीकी आयोग की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसके मुताबिक भारत में पिछले साल असहिष्णुता बढ़ी है और सिंगापुर और बांग्लादेश ने कई संदिग्ध इस्लामिक कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।